वैदेही देव के साथ उसी धर्मशाला में रुकी थी। इन दोनों को वहां पर आए 5 दिन हो चुके थे। राघवेंद्र के घर मिली कुल्हाड़ी और उनके फिंगरप्रिंट के अलावा वो और कोई सबूत नहीं जुटा पा रहे थे। शाम को वो लोग खाना खाते हुए उसी के बारे में बातचीत कर रहे थे। 2 दिन बाद चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन हमें राघवेंद्र के खिलाफ कुछ खास नहीं मिल पाया है। उसने तो अपने इल्लीगल कामों को भी लल्लन के नाम पर रजिस्टर करवा रखा है, देव ने बताया। कल शाम तक रिपोर्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद हम वापस मुंबई चलेंगे और फिर उस कुल्हाड़ी और फिंगरप्रिंट के सैंपल्स को फोरेंसिक जांच के लिए भेज देंगे, वैदेही ने कहा। भगवान करे कि उस कुल्हाड़ी पर मिला खून और बाल उस रिपोर्टर के डीएनए सैंपल से मैच हो जाए, तो फिर राघवेंद्र को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। उस कुल्हाड़ी पर राघवेंद्र के ही फिंगरप्रिंट हों तो मज़ा आ जाए। एक बार राघवेंद्र जेल चला गया तो वो सीएम नहीं बन पाएगा, भले ही बाद में पैसों के दम पर क्लीन चिट हासिल कर ले, लेकिन उसका पॉलिटिकल करियर तबाह हो जाएगा, वैदेही ने पूरी बात का निष्कर्ष निकाला। बात के निष्कर्ष निकलने के साथ ही दोनों के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। अब उन्हें लग रहा था कि उन्होंने वाकई में ही कुछ ठोस हासिल किया है। वैसे आपका आइडिया भी अच्छा था वैदेही मैम, रिपोर्टर की लाश मिलने का मामला ज्यादा लोगों को नहीं पता था, लेकिन न्यूज़ वायरल कर आपने बहुत अच्छा काम करवाया, देव ने कहा। हाँ देव, आग तो पहले से लगी हुई थी, मैंने तो बस हवा देकर उसे बहाने का काम किया था, लेकिन अभी भी मुझे टेंशन हो रही है। मामला तूल तो पकड़ गया, अब तक राघवेंद्र को भी पता चल गया होगा कि उसके यहाँ से मर्डर वेपन चोरी हो गया है। आखिरी बार उसने मुझे वहां पर देखा भी था, जाहिर है उसका पहला शक मुझ पर ही गया होगा, वैदेही ने चिंतित स्वर में कहा। हो सकता है, लेकिन वो हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, जब तक पहुंचेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी, वैदेही ने उसकी बात पर हामी भरी। उसके चेहरे पर टेंशन और परेशानी के भाव थे। समय बहुत कम रह गया था, जबकि अभी भी काम काफी पड़ा था, बस यही सोचकर वैदेही परेशान थी। आप टेंशन मत लीजिए वैदेही मैम, हम हर बार की तरह इस बार भी कर लेंगे, देव ने उसकी टेंशन कम करने के लिए कहा। वैदेही ने बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिलाया। वैदेही के साथ काफी समय से काम करने की वजह से देव उसे अच्छे से जानने लगा था। अच्छा विद्या जी, सुनिए ना, देव ने ड्रामेटिक तरीके से कहा, आपका मूड सही हो जाए इसके लिए हम कहीं बाहर घूमने चलें। देखिए ना, आपने खाना भी ठीक से नहीं खाया। आप खाना नहीं खाएंगे तो आपके घर वाले हमें ताने मारेंगे कि हम आपका अच्छे से ख्याल नहीं रखते। तुम्हारी नौटंकी फिर से शुरू हो गई, जब चीजें पूरी तरह से सही हो जाएगी तब आराम से अच्छी जगह देखकर घूमने चलेंगे, वैदेही ने कहा। जी नहीं विद्या जी, हम आपकी बिल्कुल नहीं सुनने वाले। चलिए आप जल्दी से वही नवसारी साड़ी और नाक में नथनी पहनकर तैयार हो जाइए, हम चलते हैं ना घूमने के लिए। सुना है यहाँ थोड़ी दूरी पर एक मेला लगा है, वहाँ झूले, खाने पीने का सामान और भी अच्छी अच्छी चीजें हैं, अब मना मत कीजिएगा। अच्छा ठीक है बाबा, आती हूँ, वरना तुम्हारी ओवर एक्टिंग फिर से झेलनी पड़ेगी, वैदेही ने हंसकर जवाब दिया और अंदर तैयार होने चली गई। देव ने भी पारंपरिक पहनावा पहनकर ग्रामीण रूप धारण कर लिया, तो वहीं वैदेही भी साड़ी और मेकअप में पहचान में नहीं आ रही थी। दोनों मेले में जाने के लिए निकल पड़े। रामचरण त्यागी राघवेंद्र के घर आया हुआ था, जिस वजह से वो वापस मुंबई नहीं जा पाया। राघवेंद्र रामचरण त्यागी के साथ अपने घर के गेस्ट रूम में था, तो वहीं उसके सारे परिवार वाले उसकी आवभगत में लगे हुए थे। अब बता भी दीजिए त्यागी जी, ऐसी भी क्या बात हो गई कि आप इतनी दूर हमारे घर तक चले आए, राघवेंद्र ने पूछा। उसके पूछने पर त्यागी जी हल्का सा हंसे और फिर बोले, राघव जब तुम ये अनजान बनने का दिखावा करते हो तो मन ही मन बहुत हंसी आती है। तुम अच्छे से जानते हो कि हम यहाँ किस वजह से आए हैं। इस बार हम सच में नहीं जानते कि आप यहाँ क्यों आए हैं। जानते तुम सब हो, लेकिन फिर भी अनजान बनने का दिखावा बखूबी कर लेते हो। चलो बार बार पूछ रहे हो तो बता देते हैं, क्या जरूरत थी उस रिपोर्टर को मारने की? त्यागी जी के चेहरे पर गंभीर भाव थे। ये क्या बात हुई, ना पूछा ना जाना सीधा इल्जाम लगा दिया। मुझे पूछने की जरूरत नहीं है राघवेंद्र, तुम्हें पार्टी का एक एक आदमी जानता है। उसकी लाश तुम्हारे इलाके में मिली है, इसका मतलब उसकी हत्या तुमने या तुम्हारे ही किसी आदमी ने की होगी। त्यागी जी की बात सुनकर राघवेंद्र ने अपनी एक भौं ऊपर उठाई और मुस्कुराकर कहा, हाँ हम ही मारे हैं, हमारे करेक्टर पर उंगली उठा रहा था। आप जानते हैं ना कि हमें हमारी इमेज कितनी प्यारी है, उसी के चक्कर में हम बड़े बड़ों को झेल रहे हैं, लेकिन छोटे लोगों को नहीं झेलने वाले। वो खुलेआम बहुत फुदक रहा था तो हमने भी उसे मसल कर रख दिया। उसकी बात सुनकर त्यागी जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन इस वक्त वो राघवेंद्र के घर पर मौजूद थे और आसपास उसका परिवार भी मौजूद था, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने गुस्से को काबू करके बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, मसल के रख दिया अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उसकी लाश को तो ठिकाने लगा देते। अगर तुमसे नहीं होता तो अपने किसी आदमी को बोल देते। किसने कहा था कि बीच सड़क पर खुले में उसकी लाश छोड़ने को? हम तो बहुत बार ऐसा करके छोड़े हैं, ये हमारा इलाका है, किसी की औकात नहीं हमारे खिलाफ बोलने की। हमें लगा उसे जंगली जानवर खा पी जाएंगे, लेकिन पता नहीं कौन बेवकूफ इस शहर में नया आया था और उसने पुलिस बुला ली। राघवेंद्र ने उन्हें पूरी बात बता दी थी। पूरी बात सुनने के बाद त्यागी जी ने कुछ सोच विचार किया और फिर कहा, ये मामला तो हम संभाल लेंगे, इसका इल्जाम किसी न किसी पर डाल देंगे,
लेकिन इस बार तुम्हें सख्त हिदायत दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने तक कुछ भी ऐसा वैसा काम मत करना कि हमें सीधे यशवर्धन को इस पद के लिए खड़ा करना पड़े। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, राघवेंद्र ने गुस्से में कहा। हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुमने कुछ किया तो हम मजबूर हो जाएंगे। देख लो, अब सब तुम्हारे हाथ में है, त्यागी जी ने जवाब दिया। हाँ, सब आपके हाथ में है, तभी मुख्यमंत्री के लिए हमारे साथ साथ यशवर्धन का नाम भी दे रहे हैं। त्यागी जी ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और फिर बोला, तुम अच्छे से जानते हो कि हमारा समर्थन हमेशा से तुम्हारे साथ रहा है। पार्टी के कुछ लोग उसकी तरफ बोल रहे हैं, बस यही वजह है मैं उसका नाम दे रहा हूँ। तुम अच्छे से जानते हो ज्यादातर विधायकों का समर्थन तुम्हारे साथ होगा और तुम ही मुख्यमंत्री बनोगे। त्यागी जी ने राघवेंद्र को पूरी बात समझा दी, जिसे सुनकर उसने भी राहत की सांस ली। रिपोर्टर वाला मामला भी त्यागी जी ने संभालने के लिए कह दिया था, इस वजह से राघवेंद्र की टेंशन भी दूर हो चुकी थी। सच कह रहे हैं त्यागी जी, आप बहुत समझदार हैं और तभी आप हमें हमेशा से पसंद है, राघवेंद्र ने खुश होकर कहा। हम समझदार हैं तो तुम भी समझदार बनो, हम तुम पर विश्वास कर रहे हैं राघवेंद्र, अब तुम कोई भी गलत काम नहीं करोगे। अब इजाजत दो, हमें जाना होगा, त्यागी जी ने कहा। अरे इतनी भी क्या जल्दी है जाने की, काफी दिनों बाद इस तरफ रुख किया है, चलिए थोड़ी देर सैर सपाटे पर चलते हैं। त्यागी जी ने भी बिना सोचे समझे हाँ कह दी। उन्हें वहीं छोड़कर कुछ देर के लिए राघवेंद्र बाहर की तरफ आया था तो उसने देखा कि लल्लन सहित कुछ आदमी ऑटो ड्राइवर को पकड़कर घर ला रहे थे। ले आए हैं भैया जी को, लल्लन ने कॉलर पकड़कर ऑटो ड्राइवर को बाहर निकाला और फिर आगे बोला, हम ई की लुगाई को वादा करके आए हैं कि ई को जान से नहीं मारेंगे, लेकिन ई की गलती के लिए ई को माफी नहीं मिलेगी। जब तक ई हमको अपनी सवारी में आए उस दो आदमी औरत के पास नहीं पहुंचा देता, तब तक ई हमारे पास ही रहेगा। अच्छी सी खातिरदारी करेंगे हम ई की।
धीरे बोलो, राघवेंद्र ने उसे चुप कराकर कहा। अंदर हमारी पार्टी के अध्यक्ष रामचरण त्यागी जी आए हुए हैं। हमने उनसे वादा किया है कि जब तक हम मुख्यमंत्री नहीं बन जाते, कोई खून खराबा नहीं करेंगे, और तुम लोग इसको उठाकर यहाँ ले आए। ऊपर से मानव भी यहाँ आया हुआ है। तो क्या दादा, इसको वापस इसके घर छोड़ा है? एक आदमी बोला। हमने ये भी नहीं कहा, राघवेंद्र ने जवाब दिया और उस ऑटो ड्राइवर के पास जाकर धीमी आवाज में पूछा, जब तुम्हें पता था कि ऐसा कांड हमारी तरफ से ही होता है तो अपनी सवारी को पुलिस बुलाने क्यों दी? उन्होंने पुलिस बुलाई सो बुलाई, तुम उन्हें वहीं पर छोड़कर भाग गए। हम सच कह रहे हैं दादा, हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, हम बहुत डर गए थे, ऑटो ड्राइवर ने उसके आगे गिड़गिड़ाकर कहा। क्या वो कहावत नहीं सुनी, जो डर गया वो मर गया? तुम्हारे इसी डर की वजह से हमारी लंका लग जाती तो। खैर छोड़ो, ये बताओ जब वो मियाँ बीवी तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम उन्हें पहचान लोगे क्या? राघवेंद्र ने पूछा। ऑटो ड्राइवर हाँ में सिर हिलाकर बोला, हाँ दादा, अगर सामने आए तो जरूर पहचान लेंगे। इसको यहाँ रखना ठीक नहीं होगा, ऐसा करो कि गांव के बाहर की तरफ बने शराब के ठेके पर ले जाओ और वहीं पर रखो। एक बार त्यागी जी यहाँ से चले जाएं, फिर इसे गांव के हर एक घर में लेकर जाना और पता लगाना कि वो दोनों कौन थे जिन्होंने पुलिस बुलवाई थी। उसके बाद हम उनसे निपट लेंगे, राघव ने हर एक बात समझा दी। लल्लन ने उसकी बात पर हामी भरी और ऑटो ड्राइवर को वहां से लेकर जाने लगा। वो लोग वहां से जा पाते तभी मानव वहां आ गया और उसने ऑटो ड्राइवर को राघवेंद्र के साथ देख लिया था। ये कौन है दादा और यहाँ क्या कर रहा है? मानव राघवेंद्र के पास जाकर बोला। अरे ये लल्लन के गाँव से आया है और काम के बारे में पूछ रहा था। लल्लन इसे हमसे मिलवाने लेकर आया था। हमने इसको इतनी बार कहा है कि किसी को काम धंधा देना हो तो हमसे मत पूछा करो। अरे किसी को रोजगार देना तो बड़े पुण्य का काम होता है, बस बिना सोचे समझे रख लिया करो, राघवेंद्र ने चालाकी से बात को घुमा दिया। आप बहुत अच्छे हैं दादा, लेकिन ऐसे बिना किसी की जांच पर रखिए, उसे नौकरी पर रखना सही नहीं है। हो सकता है किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, पहले इसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद ही इसे नौकरी पर रखिएगा, कहीं इसकी वजह से हम कोई प्रॉब्लम में ना आ जाए, मानव ने जवाब दिया। देखो कितनी समझदारी की बातें कर रहा है। ठीक है लल्लन, मानव की बात मानकर हमारे यहाँ जो भी काम कर रहा है उन सबके डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेना, कहीं उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्जेस ना हो, राघवेंद्र ने जवाब दिया। जी भैया जी, कल ही आपके बताए काम पर लग जाते हैं, अब इजाज़त दीजिए। लल्लन राघवेंद्र को प्रणाम करके वहां से ऑटो ड्राइवर को लेकर निकल गया। उसके बाकी आदमी भी उसके साथ चले गए। राघवेंद्र मानव की तरफ देखकर मुस्कुराया। उसने देखा कि मानव कहीं जाने के लिए निकल रहा था। कहीं जा रहे हो जो इतने बने थे ठने हुए हो? उसने देखा। हाँ दादा, सिर्फ मैं ही नहीं, आई और वहीनी भी जा रहे हैं, हम लोग गाँव के मेले में घूमने जा रहे थे, आप भी चलेंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारे पार्टी अध्यक्ष त्यागी जी भी आए हुए हैं, हमने उन्हें मेले में घूमने का प्रस्ताव रखा था और वो मान गए, क्यों ना सारे एक साथ में चलें? मानव ने खुश होकर उसकी बात पर हामी भरी। थोड़ी देर बाद राघवेंद्र अपने पूरे परिवार सहित त्यागी जी को साथ लेकर मेले में जाने के लिए निकल पड़ा। देव और वैदेही भी उसी मेले में मौजूद थे।